सेकंड लेवल में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो विषय वो है साइंस एंड टेक। और हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे, जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, आज उसी का भाग दो पे बात करने जा रहे हैं। तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव। जी हाँ, पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव पे हम बात करेंगे। और इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ बनी हुई है हमारी एक्सपर्ट मिस नीलम गुप्ता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ।
थैंक यू। हमने पिछले, जैसे आप बताया कि पिछले कार्यक्रम में चर्चा की थी कि पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव पड़ता है, और जब हम चर्चा कर रहे थे इस पर तो हमने बात की थी कि जो भी समस्याएं हैं या प्रभाव हैं वो प्राकृतिक रूप के भी हो सकते हैं और हमारे मानव कार्यकलापों के द्वारा भी होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक प्रक्रम और मानवीय प्रक्रिया के द्वारा ये जो प्रभाव हैं वो पर्यावरण पर पड़ते हैं। और पर्यावरणीय समस्याओं की चिंता करने की बात भी है, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है वो काफ़ी हद तक खराब हो गया था, जिसे कि संरक्षित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और ये जो समस्याएं हैं वो जो प्रभाव पड़ते हैं वो मानव के क्रियाकलापों के द्वारा भी होते हैं, और प्राकृतिक रूप से भी ये समस्याएं आती हैं, आपदाएं आती हैं। और जब हमने पहले बात की थी तो हमने प्राकृतिक आपदाओं की बात की थी, जिसमें हमने बात की थी बाढ़ की, चक्रवात की, और भूकंप की बात की थी, जंगल में आग की बात की थी। और ये तो प्राकृतिक हो गई, और जैसे आग लग जाती है या हम वनोन्मूलन करते हैं और प्रदूषण जितना भी है, चाहे वायु का हो, जल का हो, या फिर मृदा का प्रदूषण हो, या पारितंत्र की जो हानि हो रही है, या वन्य जीवों का जो संरक्षण, हमारा जो जो पर्यावास है उसे हम खत्म कर रहे हैं, ये सब मानव निर्मित है जिसके चलते होता है। और इसके अलावा भी जैसे पेस्टिसाइड्स का है जो हम अधिक उपयोग करते हैं, और साथ ही बायो मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, जैव आवर्धन की, ओजोन लेयर डिप्लीशन है आपका, ग्लोबल वार्मिंग है, और सबसे लास्ट में वेस्ट जनरेशन, ये सब जो हैं वो हमारे मानव निर्मित प्रभाव हैं, क्रियाकलाप हैं, जिसके चलते हमारे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो हमने पहले बात, आज जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुनामी की। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है हार्बर वेव, यानी इसके कारण अगर जब सुनामी आती है तो मतलब पानी के अंदर, यानी भूकंप आता है, पानी के अंदर भूचाल आता है, और इसमें क्या होता है कि भूकंप भी आता है और लैंडस्लाइड भी हो सकती है, या फिर वो ज्वालामुखी के विस्फोट से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो पानी है, अगर विस्फोट होता है तो बहुत ज़्यादा पानी ट्रांसफर हो जाता है, निकलने लगता है। और सुनामी यानी समुद्र के भीतर उठने वाला भूकंप होता है, और इसी के कारण समुद्र में हलचल होती है और उसमें काफ़ी तेज़ी से बड़ी लहरें उठती हैं और उससे काफ़ी हमें हानि होती है। और ये जो प्राकृतिक अवरोध हैं, जैसे कि तट रेखा पर, अगर समुद्री तट रेखा पर अगर बहुत सारे मैंग्रोव या पेड़ लगाए जाते हैं, तट रेखा के जो वृक्ष हैं वो अगर वो लगे होते हैं तो वो इस प्रभाव का, जो सुनामी का जो प्रभाव है उसे कम कर सकते हैं। जैसे सुनामी जो हमारे लोग का, हम सभी का जो एक्सपीरियंस है वो कि 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई थी, जिसके चलते आपने देखा होगा कि एशिया के बहुत बड़े हिस्से में ये सुनामी का असर देखने को मिला। लाखों लोग इसमें मारे गए थे, काफ़ी लोग बेघर हुए थे, बहुत सारी संपदा को हमारी हानि हुई थी। और उसी सुनामी के बाद में, जब सुनामी आई थी 2004 में, उसके बाद ही भू विज्ञान मंत्रालय ने हैदराबाद में एक केंद्र खोला था, सुनामी चेतावनी, पूर्व चेतावनी का केंद्र, जिसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र का गठन किया गया था। और ये जो केंद्र है वो सुनामी की पूर्व चेतावनी देता है, ताकि देश के जो तटीय भाग हैं, तटीय हिस्से हैं, उन्हें हम सुनामी का जो आने के बाद का जो प्रभाव है उससे बचाया जा सके। और ये जो थी सुनामी जो 2004 में आई थी, ये कहाँ से शुरू हुई थी, इसकी एक केस स्टडी के ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बात करेंगे इसमें, कि ये जो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी वो थी इंडोनेशिया में, एक कह कि जो इंडोनेशिया में सुमात्रा द्वीप है उसमें 8.9 तीव्रता का जो भूकंप आया था, और इसका जो सेंटर था वो पश्चिमी तट के निकट था, और इसीलिए ये जो भूकंप आया था उसके बाद कारण एक विनाशकारी सुनामी आई जिसने कि इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत के तटों पर बहुत तबाही मचाई थी, बहुत ज़्यादा। और भारत में जो तटीय क्षेत्र थे कौन कौन से असर प्रभावित हुए थे, वो हुए थे हमारे तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये प्रभावित हुए थे, और लगभग इसमें करीबन करीबन 10,000 से ज़्यादा लोग मरे थे और लाखों लोग बेघर हो गए थे। तो ये क्या है? फिर उसके बाद में जब 2011 में जापान में सुनामी आई थी, वो भी काफ़ी भयंकर थी, और जब जापान में सुनामी आई थी तो उसके बाद में न्यूक्लियर रेडिएशंस का जो खतरा था वो भी देखने को मिला था। तो जो जापान की सुनामी थी वो उसमें क्या था कि एक भूकंप आया जिसकी जो तीव्रता थी 9 रिक्टर स्केल पर 9 थी। इसके कुछ बाद ही क्या था कि समुद्र में 15 फीट से ज़्यादा लहरें उठनी शुरू हुई, और इन जो लहरें थी वो सुनामी लहरें थी, इतनी ऊंची लहरें से वहाँ पर तबाही मची, और वहाँ का जो हवाई अड्डा था वो, वहाँ की जो कारें थी उधर खड़ी हुई, जो ट्रक थे, बस थे, उनमें सब में कीचड़ भर गया था, और कास्मो तेल रोशक जो रिफाइनरी थी उसमें आग भी लग गई थी। और इसके चलते क्या हुआ, न्यूक्लियर रिएक्टर में भी खराबी आ गई थी उसके कूलिंग सिस्टम में, और 15 मार्च को जो 2011 को फुकुशिमा जो कूलिंग है संयंत्र था उसमें विस्फोट हुआ और आग लगी, और उसके कारण ये जो रेडिएशन विकिरण था, नाभिकीय विकिरण, वो बहुत बड़े एरिया में वायुमंडल में फैल गया था। तो भूकंप से होनशु द्वीप जो था वो करीबन 8 फीट की दूरी पूर्व की ओर खिंच गया था, और जो पृथ्वी की घूर्णन गति थी वो 1.6 मिलीमीटर मिली सेकेंड में उसमें वृद्धि हुई थी, और यह जो भूकंप है रिंग ऑफ फायर के उत्तर पश्चिम से मैं उत्तरी अमेरिका प्रशांत प्लेटो के इंटरसेक्शन पर पाया गया था, और भूकंप के कारण ही समुद्र में 15 मील नीचे खाई बन गई थी जिसकी लंबाई जो थी 186 मील और चौड़ाई थी 93 माइल। अब हम बात करते हैं लैंडस्लाइड की। लैंडस्लाइड हमेशा पर्वतीय क्षेत्रों में आता है, और जब भी आप देखते हैं तो क्या होता है कि जो राजमार्ग होते हैं या रास्ते होते हैं वो बंद हो जाता है, क्योंकि लैंडस्लाइड के भूस्खलन के चलते जो चट्टाने हैं, मिट्टी है या मलबा है, वो पहाड़ की ढलान से नीचे की तरफ आने लगता है। और ये कहाँ होता है? ख़ास तौर से उन स्थानों पर होता है, उन पहाड़ी इलाकों में होता है जो कि अस्थिर हैं। अस्थिर पहाड़ी ढलानों पर जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो ये चट्टानें नीचे की ओर खिसकने लगती हैं, और ये भी वो प्राकृतिक पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। और इसका मेन रीज़न क्या है कि पहाड़ों पर जो पहले वृक्ष होते थे उन्हें हमने काट दिया है, हटा दिया है, अपने विकास के लिए हमने वहाँ होटल्स बना लिए, हमने घर बना लिए, हमने रिहाइशें बनाई, और भी अपने जो वेलफेयर के लिए जो भी हमें चाहिए वो उसको बनाया। हम कई बार चट्टानों में डायनामाइट के द्वारा विस्फोट करते हैं निर्माण कार्य के लिए, सड़क बनाने के लिए, या आपको टनल बनाने के लिए करते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो लैंडस्लाइड होता है उससे वो जो पहाड़ हैं वो अस्थिर हो जाते हैं, और समय समय पर उसमें भूस्खलन की प्रक्रिया होने लगती है। और एक और रीज़न है क्योंकि कई बार बहुत बारिश होकर होती है पहाड़ों पर, तो मूसलाधार बारिश अगर कंटिन्यूस 2-4 दिन लगातार होती रहती है तब भी ये लैंडस्लाइड होने की संभावना रहती है, क्योंकि पर्वतीय और जो पहाड़ी इलाके हैं और नदियों के जो खड़े दलान हैं और तटों पर जो है ये लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, और इसी के कारण जान और माल की भी काफ़ी हानि होती है, और जो हाईवेज होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, उन पर यातायात प्रभावित हो जाता है। और ये लैंडस्लाइड तो अक्सर पहाड़ी इलाकों में होती रहती है, लेकिन कई बार ये बहुत समस्या काफ़ी भयानक होती है। एक और होता है बादल फटने का भी होता है, और हम अक्सर कई बार ये न्यूज़ सुनते हैं कि उस अमुक स्थान पर बादल फटा और उससे क्या है कि बादल फटने का मतलब क्या है कि बहुत अधिक मात्रा में बारिश होती है और कभी कभी जो है ओले और गरज के साथ तूफानी बारिश आ जाती है, और ये कुछ ही मिनटों के लिए होता है, ये नहीं कि कंटिन्यूस चलता रहता है, थोड़े से समय में ही वहाँ पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और इसके साथ चलते भी लैंडस्लाइड होने की संभावना रहती है। जो एक घटना का हम जिक्र करना चाहेंगे वो ये घटना थी कि 6 अगस्त 2010 को लेह में बादल फटने से बहुत मूसलाधार बारिश हुई और जिसके चलते क्या था कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई और उसमें करीबन 200 लोगों की जान चली गई और 200 लोग करीबन लापता हो गए थे, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों के घर, क्योंकि बाढ़ आ गई, बहुत सारे लोगों के घर और संपत्ति जो है वो हानि हुई, खराब हो गई उनकी। इसके रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है कि चाहे वो चक्रवात हो, सुनामी हो, बादल फटने जैसी घटनाएं हैं, वो घटनाएं जो कि मानव के हाथ में नहीं है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं इस, और लेकिन हम अगर प्रायर फोरकास्ट अगर कर देते हैं, चेतावनी दे देते हैं कि ये संभावनाएं हैं, तो इस तरह की आपदाएं आने की संभावना है, तो क्या होता है लोग सुरक्षित स्थानों में चले जाते हैं ताकि लोगों की जान बच जाती है और उनके जो वैल्यूएबल्स हैं उनको भी हम बचा लेते हैं। इसके बाद में जैसे बाढ़ आ गई या बादल फट गया, उसके बाद की जो स्थिति है उस स्थिति से निपटने के लिए भी पूर्व योजना की बहुत ज़रूरी होती है कि पहले से, विशेषकर जो भी आपदा संभावित क्षेत्र हैं उनके आसपास अगर आपदा आग पड़ हो गई है तो वहाँ पर लोगों को जल्दी से जल्दी सहायता पहुँचाई जाए। इसके लिए कुछ वेबसाइट हैं, लिंक हैं, जो कि अगर कहीं किसी क्षेत्र में आपदा आई है तो आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की वेबसाइट है www.ndmindia.nic.in, और आपदा के दौरान एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाता है जिसको कि आप अगर उस नंबर पर आप डायल करेंगे तो आपको शीघ्र से शीघ्र सहायता मिलने की संभावना रहती है, और ये हेल्पलाइन नंबर है 1070। अब हम बात करते हैं कि जो पर्यावरण है उस पर मानव जनसंख्या का क्या प्रभाव है। हमें सभी को पता है कि भारत की जो जनसंख्या है वो 135 करोड़ की है, और अगर दुनिया की जनसंख्या की बात करें तो वो लगभग 7 अरब के आसपास की है, और ऐसा अनुमान है कि 2050 तक ये जो जनसंख्या है वो लगभग 11 करोड़ तक हो सकती है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को बहुत सारे संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी, और जब संसाधनों की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि उन्हें भोजन चाहिए, उन्हें पानी चाहिए, उन्हें जगह चाहिए रहने के लिए, उन्हें ऊर्जा चाहिए, खाद्य उन्हें उगाने के लिए भूमि चाहिएगी, कृषि योग्य भूमि, ईंधन इनकी ज़रूरत होगी, और इससे क्या है कि ये जो है लोकल एज वेल एज आपका ग्लोबल लेवल पर पर्यावरण को बहुत अधिक प्रभावित होगा। इसकी वजह से जब इतनी जनसंख्या होगी तो उसके जब आवश्यकताओं को पूर्ति करनी है तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर लोड पड़ेगा, और यही वजह है कि प्राकृतिक संसाधनों का आज जो है वो नॉन जुडिशियस उपयोग ज़्यादा किया जाता है, अविवेकपूर्ण रूप से हम उपयोग करते हैं, और इसके चलते ये स्थिति और भी भयावह हो जा रही है। जैसे हमने बात की कि ज़्यादा जनसंख्या तो ज़्यादा खाना, ज़्यादा खाने के लिए हमें ज़्यादा कृषि योग्य भूमि भूमि चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम वनों को काटेंगे क्योंकि हमारे पास ज़मीन तो एक निश्चित उसमें ही है, जगह तो निश्चित है उतना ही उसका है क्षेत्रफल जितना है, उसमें ही हमें अपने संसाधनों हम जो प्राकृतिक संसाधन है उन्हीं को यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा ज़मीन अगर हमने ले ली तो हमें सिंचाई के लिए भी ज़्यादा पानी चाहिएगा, और जब पानी भी चाहिए और ज़्यादा फसल उगानी है तो हम पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से जब बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो उनको घर है, उनको शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थान की ज़रूरत पड़ेगी, रोज़गार के लिए उद्योग लगाने पड़ेंगे, तो इसके जो भी है इसमें हम क्या करेंगे, हम करते हैं कि हम वन क्षेत्र को ही काट कर अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, और जो पर्यावरण है वो अपना एक बैलेंस भी रखता है कि हम जितना उससे लेते हैं तो वो पुनः दोबारा से वो रिन्यू हो जाता है, लेकिन कुछ समस्याएं ये हो जाती हैं कि जब हमने उसको, जो वन थे वो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व से थे जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब वो खाली हो गया, हमें अब दोबारा से वनीकरण करना है, वन लगाने हैं, तो ये बहुत लंबा समय लेगा, तभी वो वन उस फॉर्म में आएंगे जो हमें एग्जिस्टिंग फॉर्म में दिख रहे थे। तो पर्यावरण में क्या होता है कि अपने अधिकतर संसाधनों को एक विशिष्ट अंतराल के पश्चात पुनः प्राप्त करने की क्षमता होती है, लेकिन जो ये संसाधन है इनका अगर अति दोहन कर लिया जाए और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चलते बहुत सारी हमारी पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिनमें शामिल होती हैं वनोन्मूलन और पारिस्थितिकी इकोसिस्टम लॉस होता है, हानि हो जाती है, जल का, वायु का और मृदा का प्रदूषण है, जीवाश्म ईंधन जो भी हम फॉसिल फ्यूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कोल हो, गैस हो, पेट्रोलियम हो, उसका वो कम हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, और हम जो ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनमें भी जो पेस्टिसाइड्स हैं उनकी मात्रा का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जिसके कारण ये बायोमैग्निफिकेशन इन जैव आवर्धन की होता है, ओजोन लेयर जो कि हमारी यूवी हानिकारक जो विकिरण है उनसे रक्षा करती है, वो लेयर में भी अपक्षय हो गया, यानी ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात हो रही है, और पॉल्यूशन के चलते ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बहुत सारे गैसीय पदार्थ वायुमंडल में इकट्ठे हो रहे हैं जिससे कि तापमान बढ़ रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, भूमंडलीय तापन हो रहा है, और हमारे लाइफ स्टाइल के चलते हम बहुत सारा कचरा भी उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी जो अपशिष्ट जो उत्पन्न हो रहे हैं उसके मैनेजमेंट के लिए भी एक समस्या उत्पन्न हो रही है। तो हम बात करते हैं, पहले पहले बात करेंगे वनोन्मूलन की, नहीं क्या करते, वनोन्मूलन मतलब डिफॉरेस्टेशन, यानी वन को काट कर हमने ख़त्म कर दिया। तो हम क्या कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर हम वनों की कटाई करते हैं, जिससे क्या होता है जो उसमें वन में रहने वाले जीवधारी हैं, जीव जंतु हैं, उनके अस्तित्व के लिए भी खतरा हो रहा है, बहुत सारी प्रजातियां हमारी विलुप्त होती जा रही हैं। तो जैसे हमने बोला वनोन्मूलन अगर परिभाषित करना होगा तो कैसे करेंगे कि प्राकृतिक वन आवरण की कटाई ही हमारी वनोन्मूलन कहलाती है, और वनों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए काटते हैं, जैसे फसल उगाने के लिए, पशुओं को चराने के लिए, लकड़ी और कागज की मांग को पूरा करने के लिए, और जब अधिक मात्रा में वन काटते हैं, अधिक मात्रा में पेड़ काट रहे हैं, वन मतलब पेड़ ही काट रहे हैं हम, तो उससे क्या परिणाम होते हैं कि जो जैसे हमने बात की कि जंगली पशु हो गए, जीव जंतु हो गए, उनके वास स्थान नष्ट हो जाते हैं, जिसके चलते कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, और इससे क्या है कि जैसे एग्जाम्पल लें तो टाइगर है वो ख़त्म हो गया है, बहुत कम बचे हैं, और भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि अब विलुप्त हो गई हैं या विलुप्तता के कगार पर हैं, जिसके बारे में जब हमने लेसन नंबर 19 बात की थी क्लासिफिकेशन की और ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसमें हमने इसके बारे में अच्छे से बात की थी। वन नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे, तो हमारी जो वर्षा का चक्र है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, वो भी उसमें डिस्टर्बेंस आता है और वर्षा में कमी आती है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी कम हो जाता है, क्यों, और इसके कारण हमारा वायु जो जल चक्र है वो भी प्रभावित होता है, और जो जलवायु है वो शुष्क हो जाती है, मृदा अपरदन हो गया, सॉइल इरोजन की बात कर रहे हैं, मिट्टी की जो उर्वरता है उसमें कमी हो जाती है, और वनस्पति के अभाव में बहुत सारा एरिया हमारा डेजर्ट में तब्दील हो रहा है, बदल रहा है, यानी मरुस्थलीकरण भी हो रहा है, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है। तो इसकी उपचार, इसकी रोकथाम के क्या उपाय कर सकते हैं और कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, तो हमें वनों की कटाई के लिए उचित जो कानूनी प्रावधान है उनके द्वारा हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, प्रकृति में जो वनों को नवीकरण की जो है उसमें बहुत समय लगता है, क्योंकि और इस कार्य को करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो काटे गए वृक्ष हैं उनकी जगह जितने पेड़ हमने काटे उतने ही पेड़ हम नए लगाएं, तो जब और इसे हम कहते हैं रिफॉरेस्टेशन या पुनर्वनीकरण, और इसके जो कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं कि जो वनों की कटाई है उसके विरुद्ध जो पर्यावरणीय कानून है उनको हमें कड़ाई से लागू करना पड़ेगा, और काटे गए हर वृक्ष की जगह पर हमें अधिक पौधे लगाने पड़ेंगे, यानी अगर एक वृक्ष काट रहे हैं तो हमें 10 लगाने चाहिए, और वन महोत्सव मनाने का प्रावधान है और इसे जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत बहुत बड़े पैमाने में हम वनारोपण वृक्षारोपण करते हैं। सिल्वीकल्चर को अपनाना यानी कि जो वुडी प्लांट हैं, लकड़ी काष्ठीय प्लांट हैं, पौधे हैं, उनको उगाएं, क्योंकि इससे हमें उद्योगों के लिए लकड़ी प्राप्त होती है और हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। और सोशल फॉरेस्ट्री या फिर हम लोकल लोगों के द्वारा वनीकरण के कार्य में उनको शामिल करें, ताकि वो और पेड़ लगाने के लिए औरों को मोटिवेट करते जाएं। तो वनीकरण क्या हुआ, वनों के हटाने के बाद वनीकरण द्वारा वनों की पुनः स्थापना की जाती है या फिर स्वाभाविक रूप से या कृत्रिम रूप से करते हैं। इसमें वन लगाने का मतलब क्या है कि वनीकरण वनों के लगाने की एक व्यवस्था है, जिससे उस क्षेत्र में वहाँ जहाँ की वनस्पति या भूमि उपयोग में नहीं आ रही है। और सिल्वीकल्चर यानी वन विज्ञान क्या है, ये वो प्रक्रिया है जिसमें पौधों को नियंत्रित स्थापना, विकास, संगठना, स्वास्थ्य और गुणवत्ता की विभिन्न आवश्यकताओं और मूल्यों को ध्यान में रखकर अध्ययन करते हैं। और एक चिपको आंदोलन के बारे में तो सभी जानते हैं, ये था कि हिमालय क्षेत्र में महिलाओं ने क्या किया था, पेड़ों से चिपक कर, क्योंकि उनको काटने से और गिराए जाने से बचाने के लिए एक आंदोलन किया था, जिसके जो आरंभ हुआ था इसी को हम चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं प्रदूषण की। प्रदूषण से सभी लोग वाकिफ हैं। और ये क्या है प्रदूषण, क्या है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके कारण जो पर्यावरण में होने वाले जो भी अनडिज़ायरेबल चेंजेस हैं उन्हें हम पोल्यूशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, प्रक्रिया करते हैं, जैसे नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, खाना पकाते हैं। तो नहाते हैं तो क्या करते हैं, नहाने कपड़े धोने के लिए हम साबुन या डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। और ऐसा करने के क्या कारण क्या होता है कि जो कुछ केमिकल्स हैं वो पानी में मिल जाते हैं और उसकी जो क्वालिटी है उसमें वो बदलाव आ जाता है। उसी तरह से जब हम खाना पकाते हैं तो पहले तो लकड़ी, अब तो हम और अल्टरनेटिव रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, लेकिन पहले हम कोयले लकड़ी को जलाते थे, जिससे क्या होता था कि धुआं निकलता था, वो धुआं करता वायुमंडल में मिलता था और इससे क्या होता था, वो पॉल्यूशन होता था। उसी तरह से जब कृषि संबंधी कोई भी प्रक्रिया करते थे तो उसमें हम कीटनाशक का, फर्टिलाइजर का उपयोग करते थे और क्या होता था, ये हमारी फूड चेन में एंटर कर जाता था। और क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए हम फर्टिलाइजर जाके पैदावार को बढ़ाते थे, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो भी एक्टिविटी है चाहे वो मानवीय हो, इंडस्ट्रियल हो, तो वो पर्यावरण में अवांछनीय जो पदार्थ हैं उनको प्रवाहित कर देता है। और जब अधिक मात्रा में ये पदार्थ की उपस्थिति होती है जो कि जीवों और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, इसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। जबकि जो हमारे आजकल हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं और नई तरह की उन तकनीकों को अपना कर इस प्रदूषण को रोकने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है, जो खास तौर से हमारा एयर है, वाटर है, लैंड है, उसमें जो फिजिकल है, केमिकल है या बायोलॉजिकल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें अवांछित परिवर्तन से जो मानव जनसंख्या हो गया या वन्य जीवन है या सांस्कृतिक विरासत है उस पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने बात की कि प्रदूषण तीन तरह का है, जल का हो गया, वायु का हो गया, ध्वनि का है और मृदा का है। तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे हमने बात की कि हम सांस लेते हैं और सांस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। अगर बाहर की अगर फ्रेश नहीं है तो आपको वो सफोकेशन फील होता है और आप ये बोलते हैं कि हवा अच्छी नहीं है, फ्रेश नहीं है। उसी तरह से अगर कोई भी व्हीकल है या कोई भी ऐसा सोर्स है जिससे धुआं निकल रहा हो तो आप उसे देखें ना देखें लेकिन उससे आपको पता लग जाता है कि ये पॉल्यूशन हो रहा है। तो इस तरह की जो भी गतिविधियाँ चाहे वो घर में हो या इंडस्ट्री में हो, कहीं भी होती है, उससे क्या होता है, ये धुआं जहाँ भी निकल रहा है वो वायु प्रदूषण होता है। और इसके बारे में हमने डिटेल में लेसन नंबर 26 में जब वायु और जल की बात की थी तो उसमें हमने वायु प्रदूषण की बहुत डिटेल में बात की थी, तो आप इसको हम यहाँ नहीं बात करेंगे, आप उस लेसन में से इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जल प्रदूषण की। तो जल को भी हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रदूषित करते हैं, और ये जब दोनों ही तरह से जब किसी वाटर बॉडी में मिलता है तो उसे दूषित कर देता है, और यही हमारा जल प्रदूषण कहलाता है। और इसके स्रोत, और जैसे मैंने वायु के लिए बात की वैसे ही हमने बात किया कि जल के बारे में भी हमने बहुत डिटेल में लेसन नंबर 26 में ही बात की थी। अब सिर्फ थोड़ा सा इसमें बात करते हैं जो मुख्य जल प्रदूषक हैं, उनके स्रोत हैं और प्रभाव हैं, जो कि आपके टेबल नंबर 30.1 और 30.2 में दिए गए हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि कुछ जो मुख्य जल प्रदूषक हैं वो कौन से हैं, यानी संक्रमण फैलाने वाले होते हैं, जो इसमें जो उदाहरण हैं आते हैं उसमें आपके जीवाणु आते हैं, विषाणु आते हैं और दूसरे परजीवी आते हैं, और इसका जो स्रोत है वो मानव और जानवर का मलमूत्र है, और इससे जो भी प्रभाव पड़ता है वो वाटरबोर्न डिजीजेज इससे पैदा होती हैं। अगर ऑर्गेनिक केमिकल्स इसमें जाते हैं, जैसे जो कि पेस्टिसाइड हो गया या डिटर्जेंट हो गया या ऑयल के थ्रू, तो इनके जो स्रोत हैं वो कृषि है, उद्योगिक है और घरेलू अपशिष्ट से है, और इससे क्या होता है कि कार्बनिक तत्व उसमें बढ़ जाते हैं तो बायो मैग्निफिकेशन हो जाता है। और अगर अकार्बनिक रसायन या उर्वरक पानी में मिलते हैं जिनके की स्रोत जिनके उदाहरण हो सकते हैं अम्ल हो गया, क्षार हो गया, धातु या लवण होगी, और जो कि औद्योगिक उद्योगों से अपशिष्ट है, घरेलू अपमार्जक हैं, या सरफेस फ्लो के थ्रू ये उसमें पानी जब मिल जाते हैं तो वो पानी जो है पीने योग्य नहीं रहता है। उसी तरह से रेडियो धर्मी जो पदार्थ हैं जैसे कि यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, आयोडीन हो गया, ये जो है अयस्कों का जब खनन करते हैं या संवर्धन करते हैं, विद्युत संयंत्र है या प्राकृतिक संसाधन है उनके थ्रू ये जब पानी में मिलते हैं तो आनुवंशिक रोगों भी होने की संभावना थी, ये इसके प्रभाव हैं। उसी तरह से जल प्रदूषण से पारितंत्र में भी कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि अगर जल में नाइट्रेट है, फॉस्फेट है, अमोनिया है, ऐसे लवण जब मिल जाते हैं जो कि कृषि उर्वरक या सीवेज के द्वारा या फर्टिलाइजर्स के द्वारा आता है, उससे क्या होता है पादप पोषण का कारण होते हैं और ये यूट्रोफिकेशन को बढ़ावा देते हैं। उसी तरह से अगर जंतु अपशिष्ट मिल जाते हैं तो अपशिष्ट अगर उसमें प्रदूषक के रूप में होते हैं जल में, और जिनका स्रोत है कहाँ से आते हैं ये, क्योंकि ये सीवेज हो सकता है, पेपर मिल के थ्रू हो सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उससे क्या होता है जलीय जीवों की मृत्यु हो सकती है। उसी तरह से अगर कोई पानी टैंकर जा रहा है किसी उसमें समुद्री जहाज में, अगर वो तेल का टैंकर जा रहा है और पानी में वो उसका लीक हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जो पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो जलीय जीवों को नहीं मिल पाती है सरफेस से, तो उनकी मृत्यु होने के चांस होते हैं, और ये कई घटनाएँ अक्सर देखने को मिलती है। अभी हाल फिलहाल में ही रूस के आसपास में ये घटना हुई थी। तो उर्वरकों व कीटनाशकों का कृषि में जो व्यापक उपयोग किया जाता है और कृषि उपज को बढ़ाने के लिए हम इनका अत्यधिक प्रयोग करते हैं, तो क्या होता है कि सुपोषण और मैग्निफिकेशन, बायो मैग्निफिकेशन नहीं, जैव आवर्धन की घटनाएं हो जाती हैं जो कि जल के प्रदूषण का एक गंभीर कारण है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? ये होता है कि अधिक उत्पादन देने वाली जो किस्मों के प्रयोग के साथ हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग करते हैं, उससे वृद्धि हो जाती है, अत्यधिक वृद्धि होती है, क्योंकि हमने ज़्यादा खाना चाहिए इसलिए हमने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया है, और आवश्यकता से जो अधिक उर्वरक होते हैं वो क्या होता है सरफेस वाटर के थ्रू वो पानी के वाटर बॉडीज में वाटर निकायों में पानी के जो निकाय हैं उनमें चला जाता है, और जब उसमें चला जाता है तो क्या होता है कि जो नाइट्रेट और फॉस्फोरस जैसे पोषक तत्व हैं उनसे वो वाटर बॉडी समृद्ध हो जाती है, और जब वो समृद्ध हो जाती है तो उसमें ग्रीन एल्गी बहुत तेज़ी से वृद्धि करती है, तो इसे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और इसकी वृद्धि के कारण क्या होता है जो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस होती है उससे क्या होता है कि जल में जल जो वाटर बॉडी है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और उस ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय जीवों की मृत्यु भी होने लगती है। ये आपका चित्र जो है 30.11 में इसका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिससे कि आप देख सकते हैं कि यूट्रोफिकेशन के परिणाम स्वरूप होने वाली जो संभावित घटनाक्रम है उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से ये चक्र कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन की, यानी कि जो हानिकारक नॉन बायोडिग्रेडेबल जो रसायन है उनका कम सांद्रण से प्रवेश और वो धीरे धीरे खाद्य श्रृंखला के जो फूड चेन है उसके हर स्तर में अधिक मात्रा में उसका बढ़ना जो होता है सांद्रता जो बढ़ जाती है उसमें जो वृद्धि होती है उसे हम जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे कि DDT है जिसको कि हम फसलों की रक्षा के लिए उपयोग करते हैं और जब वो एक बार फूड चेन में प्रवेश कर जाती है तो उसका जो सांद्रण है DDT का कंसंट्रेशन हर पोषण स्तर के साथ साथ बढ़ता जाता है और जिसके कारण क्या होता है जो हायर ऑर्डर का जो कंज्यूमर है उसके शरीर में ये एक समय अवधि के अंदर इनका इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ये सभी में धीरे धीरे पहुंचते जाते हैं। जैसे अगर जल में 0.2% PPM अगर है तो वो एल्गी में 77 PPM तक पहुंचती है और मछली में ये 500 to 600 है और जब ये कोई बर्ड या पेलिकन बर्ड खाती है तो उसमें ये 1700 PPM तक पहुंच जाता है। और मच्छर जो मारने के DDT का उपयोग करते हैं वैसे भी ये हमारी फूड चेन में प्रवेश कर जाती है। अब इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं जल प्रदूषण का, कि एक तो विभिन्न तकनीकों के प्रयोग द्वारा जल का कम से कम उपयोग करें, उपचार के बाद जल का अधिक हम पुनर्चक्रण करें और अवशिष्ट जल को निस्तापन करने की मात्रा भी सीमित करें, और जो सॉइल प्रदूषण है वो और भूमि लैंड पॉल्यूशन जो है उसमें क्या होता है कि मृदा में ऐसे पदार्थों का इकट्ठा होना होता है जिससे कि उसकी क्वालिटी है उसमें परिवर्तन आता है और वो कम उर्वरक उर्वर हो जाती है। और इसके जो स्रोत हैं वो हैं घरेलू स्रोत जैसे प्लास्टिक के थैले हो गए, रसोई का अपशिष्ट है, कांच की बोतलें हैं, औद्योगिक से रासायनिक अपशिष्ट हो गए, राख हो गया, धात्विक अपशिष्ट हो गए, कृषि अवशेष में उर्वरक और कीटनाशक। अब हम बात करते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या होता है, आपके कानों को जो अच्छी लगे वो तो अच्छी है, वो संगीत हो जाता है। अगर वो कानों को अच्छी नहीं लग रही है तो वो हमारे आनंददायी नहीं है, तो वो हो जाएगी शोर या ध्वनि, अवांछित ध्वनि। तो यानी शहरों में गांवों की तुलना में ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। और कैसे, और इसकी जो तीव्रता है उसको नापने के लिए हम एक डेसिबल की इकाई यानी डीबी के रूप में मापते हैं ध्वनि को। और जो मानव कान के द्वारा सुने जाने वाली ध्वनि है वो न्यूनतम ध्वनि हो सकती है, तीव्रता हो सकती है, इंटेंसिटी जो है वो होती है 10 dB। इसके स्रोत क्या है, औद्योगिक गतिविधियाँ हो सकती हैं, यातायात के साधन यानी रेलगाड़ी हुई, हवाई जहाज है, मोटर गाड़ी, इनके हॉर्न हैं या उनकी आवाज़ें बहुत ऊँची होती हैं। और जैसे सार्वजनिक स्थानों पर हम लाउड स्पीकर का उपयोग करते हैं या म्यूजिक सिस्टम को तेज आवाज़ें बचाएं, ये ध्वनि प्रदूषण का स्रोत होते हैं। आतिशबाजी जो भी करते हैं उसमें भी काफ़ी तेज़ आवाज़ के भी बम पटाखे चलाए जाते हैं और कई लोग तेज़ आवाज़ में टेलीविज़न सुनते हैं। और ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं कि कानों को, इसके कारण कानों को बहुत गंभीर हानि पहुंच सकती है और हमारी सुनने की क्षमता कम हो सकती है, कर्णशूल हो सकता है और कभी कभी पूर्ण विभेदिता भी हो सकती है, एकाग्रता में कमी हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हृदय की धड़कन जो है वो अनियमित हो सकती है, और कानों के अंदर जो कानों में गूंज भी सुनाई देती है वो भी क्या है, वो ध्वनि प्रदूषण का ही परिणाम है। नींद नहीं आती है, बीमारी धीरे धीरे आती है। और उसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं, आप टेलीविज़न या रेडियो की आवाज़ को कम करके सुने, मोटर गाड़ियों के हॉर्न केवल ज़रूरत हो तभी प्रयोग करें, शोर उत्पन्न करने वाले पटाखे ना चलाएं, मशीनरी और मोटर गाड़ियों को एक नियमित अंतराल के बाद में उनकी मेंटेनेंस करते रहें, और साइलेंसर्स का प्रयोग करें, अपने घर के चारों तरफ पेड़ लगाएं ताकि ग्रीन बेल्ट बने और जो कि ध्वनि अवशोषक का काम करती है। अब हम बात करते हैं वेस्ट और उसके प्रबंधन के बारे में। वेस्ट क्या है, एक वो वस्तु जो अनचित है, अनुपयोगी, अपशिष्ट कहलाती है, और ये विभिन्न प्रयोग तरह से हम उत्पन्न करते हैं, और इनको हम दो तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट और अजैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट के रूप में। जैव निम्नीकरणीय अवशिष्ट क्या होते हैं? ये वो पदार्थ होते हैं जिनके कारण जो जीवाणु हैं वो हानि रहित और विषाक्त पदार्थों में उनको बदल देते हैं, जैसे कृषि और जो पशु अवशिष्ट हैं, पत्तियाँ हो गई, डहनी हो गई, भूसा वगैरह, गोबर, इनको हम वो चेंज कर देते हैं। और अजैव निम्नीकरणीय वो होते हैं जो कि आसानी से निम्नीकृत नहीं हो सकते हैं, डिग्रेड नहीं हो सकते हैं, उनको हम बदल नहीं सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम के डिब्बे हो गए, प्लास्टिक हो गया, कांच है, बैटरी। तो अवशिष्ट जो हैं वो म्यूनिसिपल वेस्ट हो सकते हैं, आपके हजार्डियस वेस्ट हो सकते हैं, या बायोमेडिकल वेस्ट के रूप में इनको वर्गीकृत करते हैं। और ये जो नाभिकीय अवशिष्ट हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक अवशिष्टों की श्रेणी में रखे जाते हैं, और जनसंख्या वृद्धि के साथ ही हमारा कचरा भी बढ़ा है, और इसका इसीलिए इसका प्रबंधन बहुत कठिन हो गया है। कचरे में ऊंचे ऊंचे ढेर आपने देखे होंगे, पहाड़ जैसे दिखाई देते हैं, और ये जो है जो यहाँ का वातावरण जो होता है वो अस्वास्थ्यकर होता है, और इसके कारण ही मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की समस्याएँ उत्पन्न होती हैं, क्योंकि इसमें जो अनौपचारिक और अनावरित अवशिष्ट हैं उससे क्या होता है, मक्खी हो गए, मच्छर हो गए, चूहे हो गए, या दूसरे कीटों को प्रजनन और वृद्धि करने के लिए अच्छा माहौल मिलता है, वातावरण मिलता है, जो कि विभिन्न प्रकार के रोगों को आगे के वाहक हैं, वेक्टर हैं। इन स्थानों पर बहकर आने वाला जो बारिश का पानी है वो क्या करता है, उसके आगे आसपास की जो भूमि है और जल को उनको भी दूषित कर देता है। इसीलिए गांव और शहरों में जो ठोस कचरा है उससे निपटने के लिए लैंडफिल बनाए गए हैं, और बड़े शहरों में तो खास तौर से बायोमेडिकल अवशिष्ट से निपटने के लिए इंसिनरेशन, यानी एक भस्मीकरण, यानी वो प्रोसेस जिसके अंतर्गत जो रिसाइकलिंग योग्य पदार्थ हैं उनको अलग करने के बाद में हम क्या करते हैं, कचरे को जला देते हैं, और इसका जो राख बनता है, उत्पाद जो होता है राख होता है, जिसे कि लैंडफिल में वापस डाल दिया जाता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है अवशिष्ट प्रबंधन के लिए, कि हम कचरे को कम से कम उत्पन्न करें, मतलब 5 R's का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, रिफ्यूज बना करें, रिड्यूस कम उपयोग करें, पुनः उपयोग यानी रीयूज, फिर हम रिपेयर करें, और रिसाइकल, ये अगर 5 R का इस्तेमाल करते हैं तो इससे अपशिष्ट को हम किसी तरह के भी उत्पाद में परिवर्तित कर लें तो हम पुनः चक्रण कर लेते हैं, और इसके इससे क्या होता है कि हमारे कचरे के प्रबंधन में हमें सहायता मिलती है, और जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर भी ये बोझा कम पड़ता है, बोझ कम पड़ेगा। जैसे नगरीय अपशिष्ट को खाद में बदल दें, प्लास्टिक या कागज का पुनः चक्रण करते हैं, चावल की भूसी का उपयोग करके हम वुड पार्टिकल बोर्ड बना सकते हैं, इस तरह से हम इन अवशिष्ट को हम प्रबंधित कर सकते हैं और उपयोगी पदार्थों में बदल सकते हैं। तो इस तरह से हमने बात की कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन द वेस्ट कलेक्शन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट एंड हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन। रबिश एंड वर्क वेस्ट कैन कॉज एयर एंड वाटर पोल्यूशन, इसीलिए हमें रिसाइकल करना चाहिए। अब हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।